सूरत कमर पे चलते हैं। अब देखिए कि पहले सूरत नजम गुजरी, सितारा, अब कमर है। ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला कायनात की सैर करवा रहा है आपको मुख्तलिफ जरिए से। देखते हैं कि सूरत में हमारे लिए क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्तरबत साअत वन्शक्कल कमर। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। करीब आ गई क्यामत और चांद फट गया, और अगर ये कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते और कह देते हैं ये तो पहले से चलता हुआ जादू है। उन्होंने छुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ أَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ। यकीनन इनके पास वो खबरें आ चुकी हैं जिनमें डांट है और डपट की नसीहत है और कामिल अकल की बात है, लेकिन इन रौनी बातों ने इनको कुछ भी फायदा न दिया। बस ए नबी, तुम इनसे एराज करो। जिस दिन एक पुकारने वाला नागवार चीज की तरफ पुकारेगा, यानी सूर। खुश आना बसारहुम यखरुजून मिनल अजदासि कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर। ये झुकी आंखों कब्रों से इस तरह निकल खड़े होंगे गोया के वो फैलाया हुआ टिड्डी दल है। पुकारने वाले की तरफ दौड़ते होंगे और काफिर कहेंगे ये दिन तो बहुत सख्त है। इनसे पहले कौमे नूह ने भी हमारे बंदे को छुटलाया था और दीवाना कहकर झिड़क दिया था। बस इसने अपने रब से दुआ की, फदा रब्बहु अन्नी मग़लूबुम फंतसिर। ए रब, मैं बेबस हूं, तू मेरी मदद फरमा। नतीजा क्या निकला इस दुआ का? फतहना अबवाबस समाई बिमाइन मुनहमिर। हमने आसमान के दरवाजों को जोर के मीसे खोल दिया और जमीन से चश्मों को जारी कर दिया। बस इस काम के लिए जो मुकर्रर किया गया था, फिर दोनों पानी जमा हो गए और हमने इसको तख्तों और कीलों वाली कश्ती में सवार किया, यानी बड़ी कमजोर सी थी जो हमारी आंखों के सामने चल रही थी। बदला इसकी तरफ से जिसका कुफर किया गया। वलकत तरकनाहा आया फहल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने इस वाक्य को निशानी बनाकर रखा, बाकी बस कोई है जो नसीहत हासिल करे? बताओ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें कैसी रहीं? फकई फकाना अजाबी व नुजोर वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, बस कोई है जो नसीहत हासिल करने वाला हो? कज़्ज़बत आदुन फकैफ़ काना अज़ाबी व नुज़ुर। कौम आद ने भी छुटलाया, बस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें? इन्ना अरसलना अलैहिम रीहा। हमने इन पर तुंदो तेज मुसलसल चलने वाली हवा एक पहम मनहूस दिन में भेजी। वो लोगों को उठा उठा कर पटख रही थी गोया के वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। उनके लंबे कद की तरफ इशारा है। जब जमीन पर गिरे तो ऐसे लग रहा था शाखें अपनी जगहों से कट कट के गिरी हुई हैं। फकई फकाना अज़ाबी व नुज़ुर, बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना? वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, बस क्या है जो कोई नसीहत हासिल करने वाला हो? ये तर्क नंबर 8। इसका उन्वान क्या है? कोई है जो नसीहत पकड़े? इसके अंदर कायनात के अंदर फैले हुए कुछ मौजज़ों का जिक्र हुआ। सबसे पहले चांद के फटने की बात हुई, क्यामत के करीब आने की अलामत है, लेकिन लोग निशानियां देखकर भी फिर जाते हैं। फिर इन मौजज़ात पर लोगों का रवैया अमूमन क्या होता है? मुंह मोड़ते हैं, इसको जादू कहते हैं, छुटला देते हैं और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने लगते हैं। फिर सरकशों के हालात में इबरत की बात हुई। अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के हालात में हमारे लिए इबरत रखी, उनके हालात में हिकमत है जो नसीहत के मकसद को पूरा करती है। तंबीह इन पर कारगर ना हुई, यानी कौम नबियों ने जितना भी डराया माने नहीं, लिहाजा ए नबी आप इनसे मुंह फेर लीजिए, ऐसे लोगों का फिर गम ना करें। फिर एक पुकारने वाले की पुकार का जिक्र हुआ इस रुकू में, सूर फूका जाएगा तो क्या होगा, लोग सहमी हुई निगाहों से अपनी कब्रों से इस तरफ निकलेंगे जैसे बिखरी हुई टिड्डियां। कभी आपने बारिश के बाद देखा हो कि जब मिट्टी में बारिश का पानी जाता है तो एकदम बरसात के कीड़े निकल आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कहीं छुपे होते हैं और बारिश के साथ ही निकल आते हैं। इसी तरह क्यामत जब आएगी तो लोग अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे जैसे बरसाती टिड्डियां। अब जरा सोचिए कितने बेबुक्कत और कितनी हकारत की तरफ इशारा है कि लोग ऐसे होंगे और पुकारने वाले की पुकार की तरफ दौड़ रहे होंगे। उस वक्त कोई इनकार नहीं करेगा, हय्या अलस्सलाह की आवाज में उसका रुख मस्जिद ही की तरफ होगा, हालांकि आज रुख अक्सर दूसरी तरफ होते हैं। मुनकरीन कहेंगे कि आज का दिन बड़ा कठिन है। फिर कौम नूह के बारे में बात हुई कि कैसे लोगों ने उनकी नाकदरी की, उनको झूठा कहा, दीवाना कहा, बुरी तरह छिड़का। मैं जब इस आयत को पढ़ती हूँ ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में वस्तुजिर, यानी झिड़क देते थे उसको, नबी को झिड़कते थे, खामोश रहे, आपके जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने वो अमल कुरान पाक में उनका लिख दिया कि वकालु मजनूनुम वस्तुजिर, उन्होंने उसको मजनू कहा और उसको झिड़क दिया। किसी दीन की बात करने वाले को झिड़कना किस रवैये का अक्स होता है, खुद पसंदी का, तकबर, अपनी जात की बड़ाई का, कि आप बैठ जाए आराम से, हमें ज्यादा मालूम है आपसे। अल्लाह ताला को पुकारा उन्होंने इस पे, आसमान के दरवाजों से बारिश निकली और जमीन से चश्मे फूटे, तख्तों और कीलों वाली कश्ती पे सवार किए गए। कौम नूह ने हजरत नूह की नाकदरी की, लेकिन रब ने कदर की इंतहा कर दी। कैसे बचाया, हम लोगों से कदरदानियां मांगते हैं, नहीं, इखलास सच्चाई लाइए, अल्लाह आपकी कदर करेगा। दुनिया वाले नहीं करते तो कितने दिन करें, जो कर भी रहे वो कितने दिन करेंगे। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने उनके अजाबों के साथ बताया कि देखो तुम भी मेरे अजाबों से डर जाओ। फिर कौम आद के नाते से दो बातें हुई कि सख्त तूफानी हवा भेजी उनकी तरफ जो लोगों को जड़ों से उखेड़ती थी, और उनको फिर डराया गया कि देखो कैसा था मेरा अजाब, और आखिर में फिर वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, है कोई जो समझना चाहे। मुश्किल लगता है आपको कुरान? बहुत सारे लोगों की, मतलब मुझे जो फीडबैक मिलता है उसमें लोगों ने जिस तरह से इस दफा हम दौरे कुरान कर रहे हैं तो सब ने, यानी 100% जो हमने एक अभी फॉर्म लिया था तो उसमें हमने फीडबैक लिया था कि आप कुछ, यानी अपनी नजर है कि खामियां दूर करने और कोताहियों को और आइंदा के लिए इसलाह करने के लिए हमने इस दौरे कुरान के बारे में फीडबैक लिया था और आगे वाले कोर्स में राय ली थी। लेकिन जो चीज़ देख के मुझे खुशी सबसे ज्यादा हुई, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्वेश्चन आया, वो यही आया कि ये जो अंदाज था इससे कुरान हमारे लिए आसान हो गया। और यकीन करें कि ये जो आयत मैं पढ़ रही थी कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, तो मैंने अल्लाह का लाख शुक्र किया कि आसान कुरान को हमने मजीद मुश्किल नहीं कर दिया। आज अफसोस की बात क्या है कि आसान कुरान को बाज दफा हम मुश्किल कर देते हैं, इतने मुश्किल लफ्ज बोलते हैं, लिखते हैं। कई लोगों ने इस बात पर पूछा कि जो तर्जमा आप बोलती हैं वो बहुत आसान लगता है, वो कौन सा, और हम तो इतने मुश्किल मुश्किल तर्जमे सामने रख के उलझते रहते हैं। और ये हकीकत है, मैं जिस कुरान से पढ़ती हूँ मैं 100% उसको भी फॉलो नहीं करती। जहां मैं देखती हूँ कोई लफ्ज़ मुश्किल है, मैं शुरू में तो क्या करती थी कि वो बोल के फिर दोबारा आसान बोलती थी, तो उससे एक तो वक्त लगता था और दूसरा मुझे लगा कि वो रब नहीं बनता, तो मैं अब उसको आसान करती हूँ इस नियत से कि जिन लोगों के सामने यही कुरान खोला है वो भी अपने पास ठीक कर लें। बाज लोग इन चीज़ों को बहुत एक समझते हैं कि तब्दीली नहीं कर सकते और ऐसा नहीं, लेकिन देखिए कि असल बात जो कुरान की क्या है, वो नसीहत। आपका अंदाज कुछ भी हो, अगर आप इस कुरान को गा गा के पढ़ें, लोच से पढ़ें, मेलोडियस आवाज में पढ़ें और बात लोगों तक समझ नहीं आए, गाने के अंदाज में राग लगा के पढ़ें, लंबे लंबे तरानों की तरह पढ़े। सारे लोग हर तरह पढ़ते हैं, कोई इतने गुस्से से पढ़ते हैं कि लोगों सहम जाए, कुछ इतनी सीधी सीधी तरह पढ़ते हैं कैसे लगता है जैसे उर्दू पढ़ रहे हैं। तो असल जो बात है वो इस पूरे रुकू में हमारे लिए वो क्या है, कुरान की नसीहत से फ़ायदा उठाना है और इसको कबूलियत के दर्जे तक आसान करना है। हम सब का यही फ़र्ज है कि इस किताब को अल्लाह के हर बंदे तक पहुँचा दें। आगे चलते हैं रुकू नंबर 9 पे। कज़्ज़बत समूद बिन नुज़र, कौम समूद ने डराने वालों को झुठलाया और कहने लगे क्या हम में से ही एक शख्स की हम फरमाबरदारी करने लगे, तब तो यकीनन हम गलती और दीवानगी में पड़े होंगे। क्या हमारे दरमियान सिर्फ इसी पर वही उतरनी थी? नहीं, बल्कि ये तो झूठा और शेखी खोर है। आज भी कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं। सयालमून गदम मनिल कज़्ज़ाबुल अशर, ये सब जान लेंगे कल को कि कौन झूठा और शेखी खोरा है। बेशक हम इनकी आजमाइश के लिए ऊंटनी भेजेंगे, बस ऐसे वाले तो इनका मुंतजर रह और सबर कर। हाँ, इन्हें खबर दे कि पानी इनमें तकसीम है और हर एक अपनी बारी के दिन पर हाजिर होगा। उन्होंने अपने साथी को आवाज दी, किदार उसका नाम था, जिसने ऊंटनी पर वार किया और इसकी कूचें काट डाली। बस क्यों कर हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना। हमने इन पर एक चीख भेजी, बस ऐसे हो गए जैसे बाढ़ बनाने वाले की रौंदी हुई घास। तसव्वुर में आता, बाढ़ बनाई हो और किसी की बकरियां आए और उस बाढ़ से मुराद जो गार्डन सी बनाते हैं अपने ग्राउंड्स के इर्द गिर्द ताकि दूसरी तरफ से तहफ्फुज हो, लेकिन बकरियां ऊपर से चरें और वो सारी बाढ़ ऐसी हो जाए जैसे भूस। इस तरह वो लोग हो गए। कैसे जबरदस्त तरीके से आप देखिए कि अल्लाह ताला उनकी तबाही का मंजर हमारे सामने लाते हैं। हमने उन पर एक चीख भेजी, बस ऐसे हो गए जैसे बाढ़ बनाने वाले की रोंदी हुई घास। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दक्किर, और हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान बना दिया, कोई है जो नसीहत हासिल करे? क्या जवाब देंगे? कौम लूत ने भी डराने वालों की तकजीब की, बेशक हमने इन पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेजी सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों के, इन्हें हमने सहर के वक्त निजात दे दी। नेमतम मिनिंदीना कदालिका नजी मन शकर, अपने एहसान से हर हर शुक्र गुजार को हम इसी तरह बदला देते हैं। यकीनन लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें हमारी पकड़ से डराया, लेकिन उन्होंने डराने वालों के बारे में शक को शुबा ही किया और लूत अलैहिस्सलाम को इनके मेहमानों के बारे में फिसलाया। हमने इनकी आंखें अंधी कर दी और कह दिया कि मेरा अजाब और मेरा डराना चखो, और यकीनी बात यह है कि इन्हें सुबह सवेरे ही एक पकड़ने वाले मुकर्रा अजाब ने गारत कर दिया। फजूकू अजाबी व नुजूर, बस मेरे अजाब और मेरे डरावों का मजा चखो। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दक्किर, यकीनन हमने कुरान को पिंदोबास के लिए आसान कर दिया, बस कोई है जो नसीहत पकड़ने वाला हो? अब इसका जवाब कौन देगा? हम ही देंगे ना। तो ये था रुकू नंबर 9। इसका अनवान क्या है, कैसी रही मेरी पकड़। पूरे रुकू में पकड़ का जिक्र है क्योंकि अमूमन लोग पकड़ को पकड़ नहीं समझते। इसके अंदर सबसे पहले कौम समूद की पकड़ का जिक्र हुआ। क्या था उनका कसूर? नसीहत को झुटलाया, कहने लगे एक ऐसे आम शख्स की बात माने जो हम ही जैसा, अगर हम इसकी बात मानेंगे तो ये तो बड़ी बेवकूफी होगी, यानी यही रह गया था जो हमें दीन की बातें अब सिखाएगा। फिर इसी तरह उस शख्स को झूठा और लालची कहा कि इसका मकसद क्या है, अपने आप को बड़ा बनाना और दुनिया का कोई फायदा होगा इसके पीछे, ये इल्जाम दीन के नाम पे उन्होंने दिया। आज भी लोग दीन के काम करने वालों को कभी कभी ऐसी ही निगाह से देखते हैं। मैं देखती हूँ कि एक काम दीन का आप कोई भी करता है इंसान, दो तरह के रवैये उसके सामने आते हैं। कुछ लोग तो दुआएं करते नहीं थकते, तारीफें करते, शुक्रगुजारियां करते, आजियां करते, और कुछ लोग अपने ही अंदर जलन और कुड़न का शिकार रहते हुए उस सारे काम को सिर्फ एक फितना और फसाद फैलाने की कोशिश करार देते हैं। तो बात फिर वही है कि नसीब अपना अपना। बसों के पीछे पड़ा हुआ शेर आपको याद होगा, क्या कहते हैं, किस्मत अपनी नसीब अपना अपना। इतनी जलते क्यों हो, बसों के पीछे शायद इसलिए लिखा होता है कि मेरी बस में अगर ज्यादा सवारियां हैं तुम्हारी में कम, तो जलते क्यों हो, कुड़ते क्यों हो। और अगर जिंदगी में इंसान को इस चीज का यकीन हो जाए ना, मेरे हिस्से की चीज कोई ले नहीं सकता और किसी की मैं नहीं ले सकता, तो कभी भी इंसान फिर अपने नसीब से पीछे ना हो। याद रखिए कि जिस तरह हमें बाकी चीजें किस्मत से मिलती है ना, इसी तरह हर चीज नसीब है। रिस्क नसीब है ना, तो मोहब्बतें भी नसीब से मिलती हैं। अब देखते हैं कि घर में दो तीन बच्चे होते हैं, एक बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती है लोगों को, ऐसा क्यों होता है? उसके नसीब में ज्यादा मोहब्बत है। बाज़ दफ़ा वो बच्चा बहुत खूबसूरत भी नहीं होता, बाज़ दफ़ा एक बच्चा और वो इतना ज्यादा उसकी तवज्जो नहीं होती, लेकिन बाज़ दफ़ा छह बेटियां और उसमें एक बेटी की बड़ी मोहब्बत पैदा होती है। तो हर चीज दुनिया में नसीब से मिलती है और इसी पे फिर इंसान राजी रहेगा तो मुतमईन होगा। फिर उसके बाद कौम समूद की तबाही का जिक्र आपने देखा, कैसे उनके ऊपर बस आई और मौजज़े का जब इनकार किया, उठनी की कूचें काटी, तो अल्लाह तआला का अज़ाब आ गया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल की फिर उन्होंने कोशिशें की। और उसके बाद फिर कौम लूत के की तंबीहात का जिक्र हुआ, कैसे पत्थरों वाली हवाएं उन पर भेजी गईं और अल्लाह ताला ने रातों रात उनको घर से निकाल लिया और उसकी जगह दूसरे लोग जो थे उनको पकड़ लिया। और इसी तरह से फिर अल्लाह ताला ने इनको अंधा भी कर दिया था। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो शिद्दत के साथ अजाब का जिक्र कुरान पाक में, वो कौम लूत है। आप अभी तक कितने मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ चुके, अब आज एक नई चीज आपके सामने आ गई। अल्लाह ताला कहते हैं उनको अंधा कर दिया, कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा था। पहले तो हमने पढ़ा कि इनकी बस्ती के नीचे अपना पर रखा और इनकी पूरी बस्ती को ऊपर उठाया, इतनी ऊपर गए कि आसमान के करीब पहुंचे और वहां से जाके पटख दिया, गिर गए। और यहां की जो बात है, इसके बारे में तफसीर में आता है, इनको पर मारा और उस पर के लगते इनकी आंखें अंधी हो गई थी। जो दुनिया में अंधा बन के जिएगा, इसी तरह तो अंधा होगा। ख्वाहिशों के गुलाम लोग इसी तरह दीवानगी और अंधेपन का शिकार हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह ताला अजाब भी उनको वैसे ही देते हैं। और फिर कुरान पाक का जिक्र पूरे रुकू में चलता रहा, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। ये आसान है, कोई है जो कबूल करे नसीहत? अपने दिल के दरवाजों पर इस आयत को महसूस कीजिए। ये किसको कहा जा रहा है? ये मुझे कहा जा रहा है। आसान है मुश्किल, मुश्किल का रोना ना रो। कभी कुरान को मुश्किल कहें या मुश्किल समझें तो फौरन इस आयत को जहन में रख लें। अल्लाह ताला कितनी बार, आपने गिना कितनी दफा इस सूरत में यह आयत आई है, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। आप खुद इसको लिखेंगे ढूंढ के, फिर भी ना मानेंगे, फिर भी इस पुकार पे लब्बैक नहीं कहेंगे। तो लिहाजा अमल की बात यही है कि इस किताब की नसीहत को कबूल करना है और इसकी हर पुकार पे लब्बैक कहना है। कुरान की पुकार क्या है? यहाँ कुरान की पुकार जो है ना, वो असल में वही मिल्लत इस्लाम की हर चीज, यानी इस्लामी शरीयत का हर रुकन तौहीद की दावत देता है, माँ बाप की अतात की बात करता है और वो सारी बातें जो दीन की हैं। तो हमने दीन की हर नसीहत पे लब्बैक कहना है, सिर्फ अपनी पसंद की चीजों पर नहीं, पिक एंड चूज नहीं बनना। अफतू मिनून अभी बा दिल किताबी व तक फुरून अभी बात वाला रवैया नहीं, बल्कि पूरी की पूरी नसीहत पे अमल करना है इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 10 को देखते हैं, कज़्ज़बू भी आयातीना, उन्होंने हमारी निशानियां छुटलाई, बस हमने इन्हें बड़े गालिब कभी पकड़ने वाले की तरह पकड़ लिया। ए कुरैशियो, क्या तुम्हारे कुफार इन काफरों से कुछ ज्यादा बेहतर है, या तुम्हारे लिए अगली किताबों में छुटकारा लिखा हुआ है, या ये कहते हैं कि हम गलबा पाने वाली जमात है? अन करीब ये जमात शिकस्त खा जाएगी और पीठ फिर के भागेगी, बल्कि सआतु मौइदुहुम वसआतु अदहा व अमर, बल्कि क्यामत की घड़ी इनके वादे के वक्त है और क्यामत बड़ी सख्त और कड़वी चीज है। इस आयत को पढ़ते हुए मेरा मुंह कड़वा हो जाता है। अदहा व अमर, सख्त कड़वी कुसैली चीज को कहते हैं। इतनी रुसवा करने वाली है, इतनी कड़वी है कि उस दिन सारी जिंदगी इंजॉयमेंट में रहने वालों के मुंह भी कड़वे हो जाएंगे उसके अंजाम को देख के। कैसे? इन्नल मुजरिमीन फी दलालिम वसुर, बेशक गुनाहगार गुमराही में और अजाब में हैं। जिस दिन वो अपने मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि दोजख की आग लगने के मजे चखो। बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्रर अंदाजे पर पैदा किया है और हमारा हुक्म सिर्फ एक दफा का कलेमा होता है, जैसे आंख का छिपकना। और हमने तुम जैसे बहुत सारों को हलाक कर दिया, बस कोई है जो नसीहत ले। वकुल्लु शैइन फअलूहु फिज़्ज़ुबुर, जो कुछ उन्होंने आमाल किए सब कुछ नामे आमाल में लिखा हुआ है, हर एक छोटी बात और बड़ी बात भी। यकीनन हमारा डर रखने वाले जन्नतों और नहरों में होंगे। फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़्तदिर, रास्ती और इज्जत की बैठक में कुदरत वाले बादशाह के पास। ये था रुकू नंबर 10 और इसका उन्वान क्या है? मक़अदि सिद्क, इज्जत की बैठक। और ये कौन सी होगी? अल्लाह सुबहाना ताला के पास बैठना। आज हमारे भी ड्राइंग रूम्स हैं, ये असल में ड्राइंग रूम की बात हो रहा है। जन्नत में जन्नती उस कुदरतों वाले बादशाह के महफिलों में बैठेंगे जहां ना कोई गुनाह की बात होगी ना लौख होगी। इस पूरे रुकू में हमने शुरू में आले फिरौन का अंजाम देखा, उन्होंने निशानियों को झुटलाया, अल्लाह ने उनको पकड़ लिया क्योंकि अल्लाह की कुदरत है। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि अन करीब ये जत्था शिकस्त पा जाएगा। कौन सा? कुफार का, जिनको अपनी बड़ाई पे मान था, जो आसमानी किताब का इनकार करते थे, जो अपने आप को बहुत मजबूत समझते थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या ये कुफार बेहतर है उन लोगों से जिन पे पहले अजाब आ गए? फिर क्यामत के बारे में कुछ बातें हैं कि उसको एक बड़ी आफत करार दिया गया। तीन बातें देखी हमने। नंबर एक, क्यामत बड़ी आफत और तलख तलख साथ होगी, कड़वी होगी। वो लोग जो दुनिया में इसको झुटलाते हैं, मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे और इनसे कहा जाएगा अब चलने का मजा चखो। दुनिया में कुछ और मजे चखे, अब कुछ और चखो, टेस्ट चेंज करो अपना। फिर नाफरमानी से बचने वालों का अंजाम क्या है? कौन लोग होते हैं वो? नसीहत को कबूल करने वाले। क्या मिलेगा? बागों और जन्नतों में होंगे। और फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़्तदिर, रास्ती और इज्जत की बैठक में कुदरत वाले बादशाह के पास। आपने कभी दुनिया में कोई ऐसी महफिल अटेंड की हो, कोई ऐसी शादी, कोई ऐसी पार्टी, कोई फंक्शन जो शहर के किसी बहुत बड़े शख्स की तरफ से अरेंज की हो? सोचें उसको। मैं देखती हूँ लोगों की चाल बदल जाती है, उनको ये मान आता है कि इतने बड़े शख्स ने हमें बुलाया। हर बंदा उस वक्त एक मॉडल बन के आने की कोशिश करता है और अपने आप को नुमाया करके इस सूरत में कि इतनी बड़ी जगह पे जा रहे हैं, बाज दफा अपने हुलिये भी बदल लिए जाते हैं। मैंने देखे वो खवातीन जो आमतौर पर अपने बाहर निकलते वक्त लिबास और हिजाब का ख्याल रखती हैं, मस्जिदों में जाते हुए या बाकी कामों में, ऐसे मौकों में वो भी अपने जो ऊपर के कपड़े होते हैं वो घर भूल आती हैं खुशी में कि हम उस महफिल में जा रहे हैं। और हर बंदा एक नाज एक अदा दिखा रहा होता है, कॉन्शियस होता है, बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन तैयारी, और बात क्या है कि जी फलां बहुत बड़े लोगों के घर जा रहे हैं। ऐसी ही एक बहुत बड़ी दावत अल्लाह ताला हम सबको दे रहा है। एक ऐसी महफिल होगी कि जिसमें मलीक मुक्तदिर, दुनिया में तो वज़रा, मशीर, सदर, प्रेसिडेंट्स, इस तरह के लोग होते हैं ना बड़ी महफिलों में, वहां कौन होंगे? अल्लाह की जात और उसके फरिश्ते। दुनिया की ऐसी महफिलों में अमूमन गुना और लख का दौर दौरा होता है, वहां लखवियात नहीं होंगी। मक़अदि सिद्क़ उसको कहा, कि वहां सच्चाई की चीजें होंगी, झूठ नहीं होगा, वहां कोई झूठा प्रोटोकॉल किसी को नहीं दिया जाएगा और इज्जत और एहतराम होगा। लेकिन मिलेगा किसको? पूरी सूरत के ऊपर एक कमेंट के तौर पे जो पूरी सूरत में हुआ, किसको मिलेगा? जिसने नसीहत कबूल की। कोई है जो नसीहत हासिल करे, जो अल्लाह की बात को दुनिया में सुन के अपने आप को अल्लाह के फैसलों पे राजी कर देता है, फिर अल्लाह ताला उसको वहां की महफिलों में बिताएगा। हदीस में आता है कि जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो वहां अल्लाह ताला की तरफ से एक महफिल का इख्तिताम होगा। हर बंदा वहां अपने आमाल की निस्बत से जगह पाएगा। सामने स्टेज है, जरा सोचे, अल्लाह सुब्हान व तआला अपने जलाल और अपने कमाल के साथ वहां मौजूद होंगे। कुछ लोग बिल्कुल आगे की नशिस्तों पे बैठेंगे, असाइंड लिखा होता है ना, रिजर्व्ड, वो कुछ लोगों के लिए रिजर्व होंगे, कोई वहां नहीं जा सकेगा। कौन होंगे वो लोग? आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला सूरत वाकिया में, आज आगे बढ़ने वाले, नेकियां करने वाले। फिर उसके बाद लोग अपने से पीछे, यानी अल्लाह से कुर्ब करीबी महफिल वक्त किसको मिलेगा? जो डिजर्व करेगा, जिसने दुनिया में जितनी मेहनत की होगी, जितनी कोशिश की होगी, उतना करीब होगा। और जो दूर होगा वह दूर होगा, और फिर उस महफिल में अल्लाह ताला अपने चेहरे से निकाब उठाएंगे, और लोग उस मंजर को देख के जब वापस आएंगे, अल्लाह ताला से कलाम होगा, बहुत तफसीली बातें हैं। और लेकिन हदीस में आता है कि जब जन्नती इस महफिल से घर आएंगे वापस, तो उनके घर वाले उनको कहेंगे कि जब तुम गए थे तो तुम इतने हसीन न थे जितना हुसन तुम्हारा अब है कि जब तुम वहां से पलटे हो। अच्छी महफिल का रंग चेहरे पे आ जाता है। वजू हुई यौम इज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नादिरा। अल्लाह ताला हमें ऐसे काम करने की दुनिया में तौफीक दे कि हमें भी उस महफिल में कोई बुला सके। कितना कुड़ते हैं अगर कोई हमें ना बुलाए। जरा सोचें, आपको पता चले कि किसी ने कोई प्रोग्राम रखा इस शहर में, सबको बुला लिया, आपके इर्द गिर्द वालों को आपको नहीं बुलाया, ऐसे वक्तों में अमूमन क्या महसूस करते हैं? अब मैं भी नहीं बुलाऊंगी, आने दो मेरे घर में मौका, मैं क्यों बुलाऊं? उन्होंने नहीं बुलाया, सब भूल जाते हैं पढ़ा पढ़ाया, सुना सुना, सारी जिंदगी पढ़ाते रहेंगे अब लोगों को, जो ही ऐसा वक्त आएगा तो अपनी जात को नुमाया करके बैठ जाते हैं, अब मैं भी देखूंगी जब मेरे घर वक्त आएगा, सोच के बुलाएंगे, जगह हुई तो बुला लेंगे। हकीकत है ये, देखिए कि ऐसे वक्तों में इंसान बास दफा अपने एहसास कमतरी में चला जाता है। कुछ लोग एहसास कमतरी में चले जाते हैं कि हमें छोड़ दिया, इसकी वजह क्या है कि हम छोटे हैं। लेकिन अब देखिए, ये सारी बातें पीछे रह जाएंगी अगर इन बातों को अच्छे गुमान के साथ, दिल की खुशी के साथ और माफी के जज्बात के साथ अगर छोड़ दिया इस नियत पे कि अल्लाह मुझे कैसे लगे, मैंने तो तेरी मकअदी सिद्क में जाना है, तू मुझे अपनी उस महफिल में बुलाना, मुझे इसकी क्या परवाह। और आप देखिए कि ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती जिसको हम बहुत बड़ा बनाते हैं। और अमूमन कौन सी भी चीज हमसे ये चीजें बड़ा करवाती है? हमारा नफ्स। और वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, कि मैं नफ्स को बेगुनाह नहीं कहता, नफ्स तो हमेशा बुराई की दावत देता है।